sabato per l'inizio di giugno.
तो हम लोग जो लोग भगवान के शरण में जाते हैं और जो लोग नहीं जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी लोग जो लोग भगवान के शरण में जाते हैं उनमें से हम लोगों ने चार लोगों को देखा। तो और यहाँ पर भगवान और कुछ लोगों का बारे में वर्णन कर रहे हैं। जो लोग उनके शरण में नहीं जाते हैं वो अन्य देवताओं का शरण लेते हैं और मायावादियों का भी यहाँ पर वर्णन करते थे। पहले जो लोग भगवान का शरण में नहीं जाते हैं वो लोग वो पूरी तरह से नास्तिक हैं और वो वेदों का अनुयायी नहीं है। यहाँ पर अब जो भगवान वर्णन करने वाले हैं वो वेदों के अनुयायी हैं लेकिन भगवान के शरण में नहीं जाते। तो ऐसे लोगों का भगवान यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 20। कामस्तेतरतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो ये लोग क्या है? काम स्थित रथ ज्ञान। तो इनका बुद्धि कम बुद्धिमान है ये लोग। तो क्यों कम बुद्धिमान है? इनका ज्ञान बुद्धि से भौतिक इच्छाओं से तो मारे गए हैं। तो और ये लोग प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवताओं का शरण में जाते हैं। तम तम नियम मास्ताय, तम तम नियम मास्ताय मतलब वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अलग अलग देवी देवताओं के लिए जो अलग अलग विधि विधान होते हैं उसको पालन करते हैं। आजकल के जो आजकल वो बहुत प्रसिद्ध है ना, गणेश का उपासना, वो लोग कुछ विधि विधानों का पालन करते हैं। कम से कम ये तो ये लोग कुछ विधि विधानों तो पालन करते हैं। तो आजकल के जो देवी देवताओं के उपासक है वो कुछ विधि विधानों को भी पालन नहीं करते। आपने देखा होगा वो गणेश फेस्टिवल में गणेश को कुछ भी बना देते हैं, है ना। कभी सचिन तेंदुलकर बना देते हैं उसको, इतना मूर्ख हो गए लोग। हाँ, कम से कम वो करना है तो ठीक से तब करो ऐसे, है ना। कम से कम वो वैदिक सभ्यता में तो आता है ठीक तरह से करने से, है ना। लेकिन जो ठीक तरह से करते हैं वो लोग भी क्या है, कम बुद्धिमान वाले हैं। उनके भी बहुत ही कामनाएं हैं, इसके कारण वो लोग वहां पर जाते हैं। एक बार हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे, एक व्यक्ति बोल रहे थे प्रवचन के बाद कि यहाँ पर जो देवी देवताओं के पास जाते हैं भौतिक इच्छा से या कामना से वो लोगों को कम बुद्धिमान वाले बताए गए हैं। वो लोगों को कम बुद्धिमान वाले बताए गए, लेकिन लेकिन जो लोग कोई बौद्धिक इच्छा से नहीं जाते वो बुद्धिमान होते हैं ऐसे बताया जाता है। लेकिन कोई इच्छा नहीं है तो देवी देवता के पास क्यों जाना चाहिए, है ना? कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो देवी देवताओं के पास क्यों जाना चाहिए? कोई ऐसे प्रश्न है क्या, प्रश्न उठता है क्या उनके पास जाने के लिए, है ना? हम भगवान के पास जाते हैं कोई इच्छा के बिना जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा शाश्वत संबंध है भगवान के साथ। देवी देवताओं के साथ शाश्वत संबंध नहीं रहता, है ना? इसलिए देवी देवता उनके पास जाना मतलब भौतिक इच्छा उनसे जाना, या ऐसा ऐसा हो सकता है कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को पता नहीं रहता कि कौन भगवान है करके, उनको कोई ज्ञान नहीं रहता, तो वो ऐसे ही उनके श्रद्धा से वो किसी देवता को उपासना करते हैं, यही भगवान है करके। सो जनरली जो ऐसे होते हैं वो बाद में कृष्ण भक्त बन जाते हैं, क्योंकि आप उदाहरण है माधवेंद्र प्रो बताइए। तो इसलिए आप भक्त बन गए उनके कृपा से। शिवजी के भक्त थे, विशेष करके ऐसे बहुत सारे शिवजी के भक्त हैं वो भगवान कृष्ण के भक्त बन जाते बाद में, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी स्थिति हो सकता है। लेकिन वैसे लोगों को विरला आ पाएंगे इस जगत में। सभी लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं उसके कारण। शास्त्रों में ऐसे भी उल्लेख है कि वो भक्ति रसामृत में आते उल्लेख किया गया। हम एक बार चर्चा कर रहे थे उसके बारे में कि देवी देवताओं के पास या देवताओं के मंदिर के पास, मंदिर के मतलब वहां पर वर्णन हुआ है, आप जंगल में हैं, बड़े शेर आपको निगलने के लिए आ रहे हैं, अच्छा है कि आप शेरों के मुंह में जाए इसकी बजाय कि नजदीक में जो देवी देवताओं के जो मंदिर है उसमें आश्रय ग्रहण करने से। आप देवी देवताओं क्या है मंदिर में आश्रय ग्रहण किया तो शेर से बच सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि शेर के मुंह में घुस के मर जाए, लेकिन देवी देवताओं के या दूसरे ऐसे भी एक श्लोक है कि आप पूरा बहुत बड़ा जो अग्नि से गिरे हुए हैं अभी जल के मरने वाले हैं, इससे अच्छा है कि उसमें मर जाए ताकि देव देवताओं के मंदिर में चले जाए। ऐसे क्यों बताया गया शास्त्रों में? क्योंकि देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे तो भौतिकवादियों का संग करेंगे, वहां पर सब भौतिकवादी अपने काम इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वहां पर काम स्थित रहते ज्ञान, उनके संग करने से जब हमारे काम इच्छाएं बढ़ जाएंगे, हमारे भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएंगे तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन देवी देव एक बार मुंह शेर के मुंह में जाएंगे या अग्नि से जल जाएंगे तो एक ही बार मरेंगे, फिर से जन्म नहीं लेंगे। तो इतना खतरनाक, मतलब दूसरे शब्दों में वो भौतिकवादियों का संग नहीं करना चाहिए उसके लिए बताया गया वो। लेकिन वो देवताओं के संबंध में है, क्योंकि देवताओं के पास कौन जाते हैं? ऐसे भौतिकवादी लोग ही जाते हैं भौतिक इच्छाओं से। लेकिन वैष्णवों को बताया गया है कि देवी देवताओं को भी सम्मान करना चाहिए भगवान के वो अंश होने के कारण। जब भी ऐसे आप कोई देव देवताओं के मंदिर के पास जाके जाते जा रहे हैं सामने से, उनको दंडवत कर सकते हैं, है ना? और उनसे मांग सकता है कि भगवान के हमें भक्ति प्रदान कीजिए, आपके पास उनके पास है तो वो प्रदान करेंगे। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसे बहुत कठोर वो श्री वैष्णव जो है वो कभी भी देवी देवताओं के मंदिर में जाते नहीं, बहुत कठोरता से पालन करते हैं उसको। लेकिन हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य ऐसे बताए उनको भी दंडवत कर सकते हैं, लेकिन उनको विशेष पूजा करना, उनका ऊपर ऐसे निर्भर रहना वो अच्छा नहीं। और उनको कभी भी स्वतंत्र एक भगवान के समान क्या नहीं समझना चाहिए, स्वतंत्र भगवान नहीं समझना चाहिए, वो अपराध है भगवान के प्रति। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दक्षिण भारत में गए थे, वो मदुरई है ना, मदुरई में, मदुरई बहुत प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, मीनाक्षी मंदिर के लिए। वहाँ पर उस मंदिर में गए, वहाँ के पुजारी तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कोई वैष्णव देवता के मंदिर में आया है, प्रवेश किया है करके, वो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसे क्योंकि दक्षिण भारत में इसको बहुत कठोरता से पालन करते हैं वो लोग। और यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अलग अलग देवताओं के वो कह रहे हैं, इस तात्पर्य में और अगले तात्पर्य में भी वो कहते हैं कैसे शास्त्रों में अलग अलग देवी देवताओं, अलग अलग इच्छा के कारण अलग अलग देवी देवताओं को पूजा उपासना करने के बारे में वर्णन किया गया। इसको उपासना कांड कहते हैं, जहाँ पर देवी देवताओं का विशेष करके पुराणों में ऐसे वर्णन आता है, आपको क्या इच्छा है उसके अनुसार कौन से देवता को पूजा करना चाहिए ऐसे। लेकिन अंत में सभी पुराण क्या है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तदा आदो अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। तो हरिवंश पुराण में ऐसे बताया गया कि अंत में सभी वेद पुराण क्या है, भगवान हरि का ही गुणगान कर रहे। यहाँ पर दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के दूसरा श्लोक से सातवें श्लोक तक वो हमारे शुकदेव गोस्वामी भी वर्णन करते हैं कि कौन कौन किस इच्छा से, कौन कौन देवता के इच्छा के अनुसार कौन से देवता का उपासना करना चाहिए। जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं वो लोगों को वेदों के जो स्वामी हैं उनका उपासना करना चाहिए। वेदों के स्वामी यहाँ पर ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं या बृहस्पति भी हो सकते हैं, क्योंकि वो वेदों को जानते हैं। और बहुत ही शक्तिशाली काम जीवन, मैथुन जीवन चाहते हैं तो ये इंद्र का पूजा करना चाहिए। और अच्छा संतान चाहिए तो प्रजापतियों का पूजा करना चाहिए, बड़े बड़े प्रजापति है। कोई सौभाग्य चाहिए तो वो दुर्गा देवी को पूजा करना चाहिए। और कोई शक्तिशाली बनना चाहिए और बहुत सारे दंड चाहता है तो वसुओं को पूजा करना चाहिए। और जो एक बहुत बड़ा नेता बनना चाहते हैं या वीर पुरुष बनना चाहते हैं, हीरो, वो क्या करना चाहिए, वो भगवान शिव को पूजा करना चाहिए। बहुत सारे धान्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अदिति के अदिति को पूजा करना चाहिए। और जो जो स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं तो अदिति के पुत्रों को पूजा करना चाहिए। और इस संसार में, इस पृथ्वी पर एक साम्राज्य चाहते हैं तो वो विश्वदेव को पूजा करना चाहिए। बहुत क्या बोलते हैं, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो वो साध्य नामक देवता का पूजा करना चाहिए। लंबा आयु चाहिए तो अश्विनी कुमारों को पूजा करना चाहिए, और बहुत शक्तिशाली शरीर के अंग चाहिए, शारीरिक शक्तिशाली शरीर चाहिए तो पृथ्वी को पूजा करना चाहिए। कोई ऐसे पद पर कोई अपने पद पर लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो उनको अलग अलग जो दिशाएं हैं पृथ्वी के साथ उनको पूजा करना चाहिए। और कोई सुंदर बनना चाहते हैं तो गंधर्व लोक के जो सुंदर निवासी है उनको पूजा करना चाहिए। जो अच्छा पत्नी चाहते हैं तो वो अप्सराओं को और उर्वशियों को पूजा करना चाहिए। दूसरों के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं तो वो ब्रह्मा जी को पूजा करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा ब्रह्मांड का प्रभु है। फेम यहाँ पर यश चाहते हैं तो उनको भगवान को पूजा करना चाहिए। अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए तो उस समय पर भी बैंक वर्क करते अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए तो क्या चाहना चाहिए, वरुण को पूजा करना चाहिए। कोश काम ऐसे बताया गया, बैंक बैलेंस, कोश, ट्रेजरी। प्रभुपाद जी इसको आधुनिक तरीके से उसका अनुवाद किया है, कोश, कोश काम। तो वरुण को पूजा करना चाहिए और बहुत ही विद्वान बनना चाहते हैं तो शिव जी को पूजा करना चाहिए। और पारिवारिक जीवन में या वैवाहिक जीवन में अच्छा संबंध चाहते हैं तो जो उमा है, जो साध्वी स्त्री है, उनको पूजा करना चाहिए। इनसे आकर्षित नहीं हो रहा ना ये सुन के, ठीक है, नहीं तो हम आपको गुमराह करने कर तो नहीं रहे, ऐसे तो नहीं लग रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग देवताओं का यहाँ पर शिल प्रपा तात्पर्य में दो उदाहरण देते हैं ना, तो अलग अलग देवताओं को पूजा करने से क्या होता है, अलग अलग इच्छाओं पूर्त हो जाते हैं। लेकिन इनको क्या बोल रहे भगवान, कम बुद्धिमान वाले। क्यों ये कम बुद्धिमान वाले, पहले इसके बारे में बताया गया था, कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता हि देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर् विन्दति मानवः। तो चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में ऐसे कहा गया था कि ये लोग यह देवता, इस भौतिक जगत के देवता उनको पूजा करते, इसका अर्थ होता है कि उनको शाश्वत संबंध के बारे में पता नहीं है, शाश्वत जीवन के बारे में पता नहीं है। और आगे भगवान बताएंगे क्यों ये गलत है करके। तो अगला श्लोक लेंगे, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक श्लोक उल्लेख कर रहे हैं जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अकाम सर्व काम हुआ, और हमें ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो हम लोगों ने एकल ईश्वर कृष्ण आर सब प्रत्य, एक ही भगवान क्या है, ईश्वर है, सभी लोग उनके सेवक हैं। हमने इसको चर्चा किया, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्जितुम इच्छस्ति तस्य तस्याचलम श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ, जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। यहां पर भगवान बोल रहे कि जीव जो देवताओं को उपासना करना चाहता है वो स्वतंत्र नहीं है, उनके लिए भी भगवान कृष्ण के कपड़ा चाहिए, वो एक चीज। और देवी देवता भी ऐसे जीवों को वो उनको उपासना करने के लिए आकर्षित करने की शक्ति उनके पास नहीं है, ये बता रहे। दोनों देवी देवता और जीवात्मा दोनों भगवान के ऊपर निर्भर है। कैसे? उनको पूजा करने के लिए भगवान ही श्रद्धा देते हैं उनके हृदय में। पिछले श्लोक में भी ये शब्द आया था, थम थम नियम प्रकृत्या नियता स्वया, अपने स्वभाव के अनुसार। तो यहाँ पर भी तस्य तस्याचलम श्रद्धाम श्रद्धयार्चितुम इच्छति ऐसे कहा गया। ये स्वभाव क्या है? तो तीन गुणों के अनुसार हमारा स्वभाव होता है। हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार हम लोग तीन गुण के द्वारा कुछ स्वभाव को प्राप्त करते हैं इस जीवन में, प्रारब्ध कर्म के कारण। तो उसको स्वभाव कहते हैं, नेचर, नेचर बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो उस स्वभाव के अनुसार हम लोग अलग अलग देवताओं की उपासना करने के लिए क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाते हैं। तो उसको भी श्रद्धा कौन देते हैं? भगवान, भगवान ही प्रदान करते हैं। और ये श्रद्धा भी तीन गुणों के अनुसार होता है, इसलिए 17वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं है कि कैसे तीन प्रकार के श्रद्धा होते हैं। श्रद्धा भी तीन भागों में विभाजित किया गया। तो और वो कैसे विभाजित किया गया है, वो तीन गुणों के अनुसार उसको विभाजित किया गया है। और वो लोग तीन गुण में किसको किसको उपयोग है ना उपासना करते हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेत ताम शुणु। देहिनाम सा स्वभावज, स्वभाव के अनुसार, प्रकृत्या मीन स्वभाव, उनके स्वभाव के अनुसार। यहाँ पर स्वभाव शब्द, देहिनाम सा स्वभावज, उनके स्वभाव के अनुसार तीन प्रकार के श्रद्धा होते हैं, उसको सात्विकी राजसी और तामसी श्रद्धा कहते हैं। सत्वान रूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव स। कि तो एक कैसे श्रद्धा जागृत होता है, उनके अस्तित्व के कारण। तो अस्तित्व मतलब तीन गुण में अस्तित्व होता है, उसके अनुसार श्रद्धा भी आता है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणांशान्य यजन्ते तामसे तामसा जनः। जो सत्वगुण में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो देवताओं का उपासना करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसा, जो राजा रजगुण में है, जो वो लोग राक्षसों का पूजा करते हैं, यक्ष और राक्षसों का पूजा करते हैं। प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जनाः, जो तमस में है वो लोग क्या है, भूत प्रेतों का पूजा करते हैं। तो ऐसे तीन प्रकार के श्रद्धा के अनुसार वो क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को, अलग अलग अन्य जो जीवों को वो लोग इस जगत के जीवों को पूजा करते हैं। इन सब का श्रद्धा कौन, भगवान कौन स्थिर करते हैं उनके, उन अलग अलग लोगों के उपासना करने के लिए वो स्वयं भगवान करते हैं। भगवान हृदय में बैठकर परमात्मा के रूप में उनके श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। तो इसलिए जीवात्मा क्या है, उनके ऊपर निर्भर है। तो हृदय में बैठ के भी करते हैं वो, वेदों के भी, वेदों में इन अलग अलग प्रकार के उपासना या देवी देवताओं के बारे में गुणगान करके भी उनकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं। अभी कभी प्रश्न होता है ना, क्यों वेदों में वेद व्यास ने ऐसे बड़े देवी देवताओं के उपासना के बारे में वर्णन किया, उनके बारे में क्यों गुणगान किया, वो बहुत शक्तिशाली है, ऐसे ऐसे गुणगान करते हैं उनको, आप इसको उनको पूजा करने से ये प्राप्त हो जाता है, ये सब चीज वर्णन करता है। ऐसे प्रश्न उठ सकता है कि क्यों ये वर्णन करते हैं ऐसे, वो वर्णन नहीं करते तो ये लोगों का श्रद्धा कैसे होगा उनको पूजा करने के लिए। तो इसलिए ऐसे वर्णन आते हैं। और अभी फिर ऐसे प्रश्न उठता है, हमारा शाश्वत संबंध भगवान कृष्ण के साथ है तो क्यों ना भगवान हमें ऐसे ही बना देते थे कि हम सिर्फ उनको उपासना करें, उनका आराधना करें, क्यों ऐसे देवी देवताओं को। फिर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में वो कहते हैं कि भगवान कोई स्वतंत्रता के बीच में नहीं आते हैं, और स्वतंत्रता है, नहीं है तो अलग अस्तित्व का क्या अर्थ होता है, हमारा अलग अस्तित्व का क्या होता है। जैसे आजकल ऐसे बहुत सारा कंप्यूटर वगैरह आते हैं ना, कंप्यूटर या फोन आते हैं, उसमें ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं अलग अलग कार्य करने के लिए। तो हम लोगों पे को भी ऐसे प्रोग्राम किया गया तो इफ वी वुड हैव बीन प्रोग्राम्ड जस्ट टू ओनली सर्व कृष्ण, देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। तो स्वतंत्रता का कोई प्रश्न ही नहीं होता था, है ना। तो भगवान चाहते, और स्वतंत्रता नहीं है तो कैसे होता है, वो प्रेम का संबंध नहीं होता, वो प्रेम में कोई रस नहीं आता है। जीवात्मा का भगवान के साथ प्रेम का संबंध होता है, तो वो स्वतंत्रता नहीं है तो उस प्रेम में कोई रस नहीं होगा। ऐसा हो सकता है ना, कोई व्यक्ति कोई स्त्री को जाके ऐसे क्या कर सकते हैं, एक रिवॉल्वर लेकर उनके सर के ऊपर लगा के तुम मुझे प्रेम करना चाहिए ऐसे, वो रिवॉल्वर के डर से वो बोल सकते हैं कि मैं आपको प्रेम करूंगी करके, लेकिन वो प्रेम नहीं होता। प्रेम मतलब स्वतंत्रता होना चाहिए, या इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस मतलब अलग व्यक्ति होने का अर्थ होता है कि स्वतंत्रता होना चाहिए। जीवात्मा एक अलग व्यक्ति है ना, भगवान ने पहले वर्णन न त्वेवाहं जातनासं न त्वं नेमे जनादिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयं मतपरम। तो अलग व्यक्ति का अर्थ होता है स्वतंत्रता, इसलिए भगवान क्या है स्वतंत्रता में स्वतंत्रता देते हैं जीवात्मा को, और स्वतंत्रता देने के बाद उनके स्वतंत्रता में बीच में नहीं आते हैं। इसलिए भौतिक जगत में जीव अपने स्वतंत्रता को उपयोग करके अलग अलग स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, अलग अलग देवी देवताओं को उपासना करने के लिए वो आकर्षित हो सकता है, क्योंकि अलग अलग गुणों के प्रभाव में होने के कारण उनका आकर्षण ही ऐसा हो जाता है। आप किसी को सबको आपको बुला के भगवान का दर्शन कराएंगे तो वो सभी लोग आकर्षित नहीं होंगे, उनको ऐसे गौर रूप चाहिए, कुछ लोगों को बहुत सारा हाथ होना चाहिए, उसमें बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, लंबा क्या है जिह्वा होना चाहिए, या कभी कभी ऐसा होता है हम लोग भी कीर्तन करते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन, लोग आकर्षित नहीं होते उसे, वो लोगों को ऐसे कुछ किसी के शरीर में कोई ऐसे भूत या प्रेत का प्रवेश होना चाहिए और वो कुछ ऐसा नृत्य किया तो उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं, है ना, कुछ ऐसा डेकोरेट करके, है ना, तो उनके गुणों के अनुसार वो लोग उनसे ही आकर्षित हो जाते। एक बार हमें एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी मैं विग्रह सेवा करने के लिए नहीं आता हूँ, इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे ये इस्कॉन के कृष्ण जो है उससे इतना आकर्षित नहीं होते है, ऐसा आकर्षक नहीं है ऐसा, हाँ कि वो समझ सकते हैं कैसे गुणों का प्रभाव कैसे रहता है। तो उसके अनुसार वो लोग अलग अलग उनके स्वभाव के अनुसार, प्रकृत्या नियता स्वया, प्रकृति के अनुसार अपने वो श्रद्धा बन जाती है, वैसे वैसे श्रद्धा के अनुसार अलग अलग लोगों के उपासना करने के लिए और भगवान भी स्वतंत्रता दे देते हैं उनको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद पिछले तात्पर्य में क्या किया उन्होंने, वो श्लोक उल्लेख किया, किसी व्यक्ति को ऐसा भौतिक इच्छा भी है तो क्या करना चाहिए, वो भगवान के पास ही जाना चाहिए, वो अच्छा है। जैसे वो चार लोग ना चतुर्विधा भजन्ते माम, तो इसलिए वो श्लोक भी उल्लेख कर रहे हैं ना, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कौन सा श्लोक है, श्लोक क्रमांक दूसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का दसवां श्लोक। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम भागवत से पढ़े ना, कौन कौन देवी देवताओं को, किस अध्याय से था वो, वही अध्याय से, इसके पहले के कुछ श्लोक है कि हालांकि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये लोग पूजा करते हैं लेकिन वास्तव में क्या करना चाहिए सबको, भगवान का। आपके पास बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, आप मोक्ष का इच्छा कर रहे हो, आप भगवान को ही इच्छा के पूजा कीजिए, तीव्र न भक्ति योगे न, तीव्रता से करेंगे तो इन सभी इच्छाओं से आप मुक्त होकर भगवान के भक्ति को प्राप्त करेंगे, ऐसे बताएगा। तो ये वो अच्छा है, क्या होता है फिर भगवान के पास जाएंगे तीव्र भक्ति करने से क्या होता है, हाँ उसके बारे में चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, वहां पर भी ये श्लोक उल्लेख किया था, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष, ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सिखा रहे। अन्य कामी यदि खोरे कृष्ण र भजन ना मागी देह कृष्ण तारे देह स्वचरण। अन्य कामी मतलब कुछ अन्य इच्छा है, भौतिक इच्छा है उनके अंदर, शुद्ध भक्ति हम लोगों ने चर्चा किया, कोई भी अन्य इच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको अन्य काम है। अन्य कामी यदि खरे कृष्णेर भजन, भगवान कृष्ण को भजन करते हैं, न मांगीते है कृष्ण तारे देह देन स्वचरण, हालांकि वो मांगते नहीं है फिर भी भगवान उनको अपने चरण कमल प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते कि जीव बद्ध जीव भौतिक जगत में ऐसे ही, वो हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, इंद्र तृप्ति की जो ज्वर है, बुखार है, वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं भगवान, है ना, वो हम लोगों ने चर्चा किया ना, एक स्त्री थी और उसका एक सेविका थी, वो कह रहे थे मुझे भी क्या है इससे भी ज़्यादा बुखार होना चाहिए मुझे, ऐसे ऐसे लोग भौतिक इच्छाओं को बढ़ाना चाहते हैं, भौतिक इंद्र तृप्ति को इस जगत में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन भगवान वो नहीं चाहते, वो ऐसे उस इच्छा से भगवान के पास आएंगे तो भगवान उसको वो नहीं देते, वो अपने चरण कमल प्रदान करते। कृष्ण क्या कहते हैं देखिए, कृष्ण कहे नामा बजे मागे विषय सुखा अमृत चाड़ी विष मागे भोड़ा मूर्खा। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो अन्य काम से उनके पास ये आते हैं, आमा भजे मागे विषय सुखा, मेरा भजन करता है, मेरा उपासना करता है लेकिन विषय सुख मांगता है, अमृत ये कैसा है, अमृत चाड़ी विषय मागी, अमृत को छोड़कर विष मांगने के समान है, ऐसे यही बड़ा मूर्ख, इसलिए मुख्य कौन है, बहुत बड़ा मूर्ख है यहां पर, इसलिए अल्प गया। आमी विज्ञा यही मूर्ख विषय के न दीबा स्वचरणामृत दिया विषय बुलाईबा। आमी विज्ञा यही मूर्ख विषय के न दीबा, लेकिन ये मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं विज्ञ, मैं बहुत कुछ सब कुछ जानता हूं, मैं विद्वान हूं, मैं क्या करूंगा, यही ये मूर्ख विषय के न देवा, इसको क्यों विषय दूं मैं, भौतिक यू नो चीजों को क्यों दूं, भौतिक संपत्ति को क्यों दूं मैं जानता हूं कि ये विष के समान है, ये विषय है, इंद्र तृप्ति के विषय क्या है, संपत्ति भौतिक संपत्ति विष के समान है, वो मुझे जानता हूं तो वो क्यों दे मैं विष को, क्यों जान बुझ के विष क्यों दू मैं इसको, ऐसे बोलते हैं। स्वचरणामृत दिया विषय बुलाए बा, मेरे चरणामृत को देके, मेरे चरण कमल को देखकर मैं उसको विषय बुला देता हूँ, बहुत ही काम इच्छाओं को बुला देता हूँ, ऐसे भगवान के ऐसे हुआ ना ध्रुव महाराज के साथ, वो भौतिक संपत्ति भौतिक विषय के इच्छा से वो आया भगवान के पास, लेकिन सब बुला दिया उन्होंने, तो उनको देख कर ध्रुव महाराज क्या करने लगे, तो मैं एक खाज के टुकड़ों को ढूंढने के लिए आया, लेकिन मुझे क्या हो गया, तो मुझे रत्न मिल गया, ऐसे होते हैं। तो इसलिए किसी को कोई अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी, कोई भौतिक इच्छा है नहीं है, मोक्ष इच्छा है, सब भगवान के पास आना चाहिए, तो भगवान सब ठीक कर देंगे उसको। उसके बाद में वो श्लोक भी है, एक श्लोक श्रीमद् भागवतम से, सत्यम दिशत्यर्थितम अर्थितो नृणाम नैवा तदो यत् पुनरर्थितो नृत्। तो पंचम स्कंद में आता है ना, सत्यम दिशत्यर्थितो नैवार्थदो यत् पुनरर्थितो यथा स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापि दानं निजपादपल्लवम्। तो सत्यम दिशत्यर्थितम अर्थितो नृणाम, अर्थ की कामना से जो लोग भगवान को पूजा करने के लिए आते हैं, तो क्या करते हैं, भगवान एक बार दे देते हैं, दूसरी बार फिर से आते हैं तो उनको वो नहीं देते। नहीं मार दो पुनरर्थितो यतः स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम, हालांकि अनिच्छताम वो इच्छा नहीं कर रहा है भगवान कृष्ण के प्राप्त करने के लिए, उनके चरण कमलों को, फिर भी भगवान उनको दे रहे, स्वयं विदत्ते है ना, इच्छा पिदानम निज पाद पल्लवम, तो ऐसे अपने चरण कमल में आश्रय ग्रहण कर दे देते दे। तो इस भौतिक जगत में कोई भी भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं कर रहा है, सब लोग भौतिक इच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान इतना कृपालु है कि उनको पता रहता है कि ये इसके लिए अच्छा नहीं। तो इसका अर्थ क्या होता है, जो हमें चाहिए हमसे भी ज्यादा भगवान को पता रहता है, तो इसलिए वो भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। सो भगवान है ना, भगवान गॉड नोज मोर देन वॉट वी नीड देन अवर सेल्फ, हमसे भी ज्यादा वो जानते हैं क्या चाहिए हमको। तो ऐसे यहाँ पर ये श्लोक को उल्लेख किया गया है। श्रील प्रभुपाद इसको बोलते हैं, इसके तात्पर्य में वो कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में ऐसे कहा गया है, इस तात्पर्य में है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये ना चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। तो भगवान शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनके कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं के पूजा करते हैं। तो अगला श्लोक, अंतवंतु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मत्पत्ता यान्ति मामपि। नहीं, हम लोग एक श्लोक छोड़ दिया ना, सतया श्रद्धया युक्तास्तस्याराधनमीहते लभते च तथा काम। ऐसी श्रद्धा से समान्वित वह देवता विशेष पूजा करने के यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो वो इच्छा करते हैं देवी देवताओं का, उसके लिए भी वो जो श्रद्धा की जरूरत है उनको उपासना करने के लिए वो भगवान देते हैं, और देवताओं के द्वारा वो, क्योंकि उनको आकर्षित करने के लिए भी वो शक्य नहीं होते, उसको भी भगवान ही प्रदान करते हैं उनको आकर्षण या श्रद्धा। और उसके बाद यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो भी लाभ देवताओं से प्राप्त होता है वो भगवान ही देते हैं। सब कुछ भगवान से ही निकलता है, देवी देवता भी क्या है वो भगवान से, उनको ऐसे शक्ति दिया गया है ये सब चीज़ों को लोगों को प्रदान करने के लिए, तो इसलिए अंत में सब कुछ भगवान ही प्रदान करते हैं। तो ये देवी देवताओं के द्वारा करते हैं वो, लेकिन वो अंत में वही कर रहे हैं, सब कुछ वही दे रहे हैं। तो फिर से ये क्या हो रहा है, कैसे देवी देवताओं के उपासक भी भगवान के ऊपर निर्भर है, तो हमें जानना चाहिए, है ना। ऐसा लग सकता है ना हम लोगों को कि ये देवी देवताओं का उपासना किया उन्होंने, उनको ये सब चीज़ प्राप्त हो गए, ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि वो लोग भी भगवान के ऊपर, देवी देवता स्वतंत्र नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के आरंभ में बोलते हैं, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते, तो देवी देवता भी हेल्पलेस है, वो लोग वो स्वतंत्र नहीं है, वो भी निर्भर है भगवान के ऊपर, ठीक है। श्लोक क्रमांक 23, अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसा देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाला फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में और आगे बता रहे हैं भगवान क्यों अल्पज्ञ है लोग। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत् अल्पमेधसा। तो पहले उन्होंने क्या बताया देवी देवताओं को, उपासना उपासकों को रत ज्ञान बताया उन्होंने, उनका ज्ञान नष्ट हो गया, बुद्धि नष्ट हो गया। यहाँ पर अल्पमेधसा कह रहे हैं, अल्पमेधसा मतलब अल्पज्ञ है, दोनों एक ही है। सो क्यों अल्पज्ञ अल्पमेधसा है वो लोग, क्योंकि ऐसे चीज़ों के लिए प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो शाश्वत नहीं, अंतवंत इमे देह, ये देह के साथ सब कुछ नाश हो जाता है। जो कुछ भी हम लोग देवी देवताओं के द्वारा प्राप्त करते हैं वो इस देह के साथ नष्ट हो जाता है। आप बहुत सारा चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं ना वो एक वो सत्यजीत महाराज, उन्होंने क्या किया, सिमंतक मणि को प्राप्त किया, किसको पूजा करके, सूर्य देव को पूजा करके, लेकिन क्या हो गया, उनका भी नाश हो गया उसके कारण। तो अंतवंता इमे देहा नित्य शोकता शरीरिना, ये सब ऐसे जो भौतिक चीज हम लोग प्राप्त करते हैं इस शरीर के साथ, वो भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो शाश्वत चीज नहीं है। देवी देवता इस भौतिक जगत के लोग हैं और वो जो भी प्रदान करते हैं वो भी इस भौतिक जगत का ही है, वो शाश्वत चीज कुछ प्रदान नहीं कर सकते, वो सिर्फ भगवान कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए अंतवत्तो फलम तेषां, वो अल्प देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। और बाद में कह रहे हैं जो देवों को पूजा करते हैं वो देवों के पास चले जाते हैं, और जो मेरा पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जो गलत धारणा है उसके बारे में, भगवद्गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाले सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही गंतव्य को प्राप्त करते हैं, यथामत तथा पथ, है ना, जो ऐसा वो लोग कहते हैं कि आप कोई भी मार्ग को पालन करो या कोई भी देवता को उपासना करो, अंत में आप भगवान के पास ही चले जाओगे, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होता है क्या, आप आप लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, आप मुंबई के लिए टिकट कर लिया और बैठ गए हैदराबाद के ट्रेन में, दिल्ली पहुंचेंगे क्या? ऐसा होता है?
नहीं होता है।
ठीक है, कभी कभी वो लोग बोलते हैं आप विमान से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, आप दिल्ली पहुंचेंगे, है ना, दिल्ली का, ऐसा लोग कहते हैं। आप कुछ बहुत कुछ तर्क दे सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया। वो हमारा वार है ना, हम जो भी ऐसे तर्क देते हैं उसके लिए भी शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए, ऐसे कुछ बक नहीं सकते हैं। तो वो हमें ना जान से अगले अध्यायों में भी भगवान बताएंगे, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मध्या जिनोपिमा। तो यान्ति मध्या जिनोपिमा, यहाँ पर मद्वक्ता यान्ति माम अभी ऐसे कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि कोई कोई ऐसा लोग कहते हैं कि देवी देवता क्या है, भगवान के अंग है, इसलिए अंगों को पूजा करेंगे तो शरीर को, या अंगों को अन्न देंगे तो शरीर को भी पहुंच जाएगा, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन हम अंगों को, अलग अलग अंगों को अन्न नहीं देते, हाथ को, पैर को, हम लोग पेट को अंग दे अन्न देते हैं और सही मार्ग से उसको अन्न को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पीछे से अन्न डालते हैं। ठीक है, तो है ना, इसके लिए सभी सही विधि होता है, कहाँ देना है अन्न, सब कुछ है ना, तो ऐसे कहते हैं। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत से उल्लेख किया कर रहे, वो 11वें स्कंद के शायद 30वें अध्याय के 29वां और 30वां श्लोक है, वहाँ पर ऐसे कहा गया सभी जो 8 वर्ण और आश्रम है वो क्या है, वो भगवान के अलग अलग भाग से वो निकले, वो ब्राह्मण सर से निकले और सन्यासी भी सर से निकले, क्षत्रिय क्या भुजाओं से निकले, जो वैश्य है उनके नाभि से निकले, पेट से निकले, और जो शूद्र है चरण कमल से, उनके चरण से निकले, वो अलग अलग अंग है। लेकिन ये सभी लोग क्या करना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए। वो लोग भगवान का पूजा नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, उनका पतन हो जाता है। हालांकि वो वर्णाश्रम के नियमों को अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान का पूजा नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, उनका पतन हो जाएगा। तो हमेशा वर्णाश्रम के केंद्र बिंदु क्या है, भगवान कृष्ण है। हालांकि वर्णाश्रम धर्म में ऐसे देवी देवताओं का उपासना भी है, होता है, लेकिन वो प्रमुख चीज नहीं है। और हमें ऐसा भी सोचना नहीं चाहिए, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे उसके बारे में कि देवी देवताएं स्वतंत्र नहीं है, तो ऐसा कभी कभी लोग ऐसे भी सोचते हैं, सब बहुत सारे भगवान हैं, ऐसे भगवान के मार्केट में आप किसी को भी चुन सकते हैं, तो, और उनका स्वतंत्र, वो स्वतंत्र है, सब लोग अलग अलग भगवान है। लेकिन ऐसे हो सकता है क्या, भगवान, भगवान का परिभाषा क्या है, असम और दो, उनका कोई समान नहीं है और उनसे भी श्रेष्ठ नहीं है, वो सर्वोच्च व्यक्ति है। तो इसके कारण उनका कोई ऐसे प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रतिस्पर्धा होता है, तो मोदी के साथ साथ राहुल भी जीतना चाहता है ना, लेकिन भगवान के साथ ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो भगवान तीनों काल में वो भगवान होते हैं। श्री सत्यम काल है, तीनों कालों में वो सत्य है, परम सत्य है, कभी ऐसे भगवान बनते नहीं है, शाश्वत रहते। तो ईसाई धर्म में भी ऐसे होता है, वो लोग कहते हैं कि एक शैतान है, सेटन कहते हैं, तो वो क्या है, भगवान के साथ स्पर्धा करता रहता है। हम लोग भगवान को वोट देंगे, भगवान का उपासना करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, हमसे शक्ति पाकर वो शैतान है ना, शैतान को क्या कर लेते हैं, हरा देते हैं, इसलिए हमें भी वो सब जो भी जरूरत है वो प्रदान करता है, ऐसे वो लोग सोचते हैं। उनका धारणा क्या, तो ऐसा वो लोग उनका धर्म है, लेकिन भगवान का कोई कॉम्पिटिटर नहीं, स्पर्धालु नहीं होते, तो वो सर्वोच्च व्यक्ति है सभी। यहाँ पर जैसे पहले इसके पहले के श्लोक में बताया गया श्लोकों में कि भगवान एकल ईश्वर कृष्ण आर सर्वज्ञ, एक ही भगवान जो है वो ईश्वर है, सभी उनके सेवक। तो श्लोक क्रमांक 2, तो यहाँ पर अंतवंता फलम तेषम, ऐसे नाशवान चीजों के कारण हम लोग इसको मेहनत नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगला श्लोक, अव्यक्तम व्यक्ति परम भाव जानन्तो ममाव्ययम् मनोत्तमम्। बुद्धि ही मनुष्य मुझको ठीक से ना जानते जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो ये किनके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर? मायावादियों के बारे में। ये मायावाद, मायावाद के हम लोग अलग अलग धारणाओं को हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, एकात्मवाद, प्रतिबिंबवाद। एकात्मवाद में भी बहुत सारे ऐसे वाद होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रमुख जो मायावादियों का धारणा क्या है, उनका क्या मत है, धारणा क्या है, वो इस श्लोक में बताया गया। वो लोग क्या कहते हैं, भगवान जो अजन्मा और अव्यय है, अजन्मा मतलब वो हमारे जैसे जन्म नहीं लेते, भौतिक शरीर रूप को धारण नहीं करते, ये भौतिक तत्वों से बना हुआ ये शरीर को धारण नहीं करते हैं। ऐसे अजन्मा भगवान को और अव्यय जिनका कभी नाश नहीं होता है, ऐसे भगवान को वो क्या बोलते हैं वो लोग, वो पहले निराकार थे, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्न, वो व्यक्ति नहीं थे, वो अव्यक्त थे, अभी व्यक्ति बन गए हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्न मन्यन्ते माम अबुद्धय, अबुद्धय सो मन्यन्ते, ऐसे वो लोग कहते हैं। ये मायावाद का प्रमुख धारणा है कि भगवान का क्या है, वो स्वरूप क्या है, माया है, माया शक्ति से बना है, भौतिक तत्वों से बना है। अंत में भगवान क्या है, निराकार है, जब इस भौतिक जगत में प्रकट हो जाते हैं तो वो माया से बना हुआ एक ऐसे शरीर को धारण करते हैं, ऐसे वो लोग कहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद या तात्पर्य में आप देखिए वो मायावादियों की परिभाषा देते हैं। कहाँ पर है वो, बीच में है ना कहीं पर, या वो तात्पर्य के कौन सा पैराग्राफ है, पहला दूसरा तीसरा पैराग्राफ के अंत में देखिए, अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं, ये परम सत्य को नहीं जानते। तो मायावाद क्या है या मायावादी कौन है, इसका परिभाषा यहाँ पर दिया गया, क्योंकि इस श्लोक में वही बताया जा रहा है कि वो लोग क्या कहते हैं, मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका स्वरूप इत्यादि सभी माया है। तो आपको कभी पूछा गया कि मायावादी कौन है, ऐसे बता, या मायावाद क्या है, तो क्या बताएंगे आप, मायावाद वो धारणा है जिसके द्वारा लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान के शरीर भौतिक प्रकृति से बना है, प्रकृति का बना है, उनके कार्य स्वरूप इत्यादि सभी क्या है, माया है, ऐसे वो लोग कहते हैं। उस धारणा को मायावाद कहते हैं और ऐसे व्यक्तियों को मायावादी कहते हैं। समझ में आ गया परिभाषा, मायावादियों का परिभाषा, मायावादी कौन होते हैं। तो उसको उसी चीज को यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्न मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भाव मजानंत। वो भगवान को जानते नहीं है, भगवान के परम भाव जो स्वभाव स्वरूप है उसको वो जानते नहीं। तो भगवान इस श्लोक में इनको भी अबुद्धय क्या माम अबुद्धय, पहले देवी देवताओं को भी क्या क्या उन्होंने अल्पमेधसा और रथज्ञान तो ऐसे उन्होंने बताया, ये लोग भी अबुद्धय, ये लोग भी बुद्धिमान नहीं है ऐसे भगवान कह रहे हैं। क्योंकि भगवान क्या है, अजन्मा है, उनका स्वरूप कभी भी भौतिक नहीं है, तो वो माया से नहीं बना हुआ है। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सारे प्रमाण देते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था ना, क्या भगवान निराकार है या साकार है, हम लोगों ने पहले चर्चा किया था ना, क्या क्या तर्क दिए थे हम लोगों ने बताइए। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था ना, तर्क के आधार पर हम कैसे सिद्ध करेंगे कि भगवान निराकार है या वो साकार है करके, क्या कहेंगे आप? वो अपूर्ण होंगे, उनमें आकार नहीं है और हमारे अंदर आकार है तो वो अपूर्ण हो जाएंगे ना, है कि नहीं? तो परम सत्य का परिभाषा जानना चाहिए पहले, वो कैसे सबका स्रोत है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण मतलब पूर्णमिदम जन्माद्यस्य यतः, ये सब भगवान की परिभाषा देते, परम सत्य का परिभाषा देते, तो ऐसे हम लोग तर्क कर सकते हैं। और सातवें अध्याय में भी हम लोगों ने देखा, इसी अध्याय में वो चर्चा हुआ था ना सातवें श्लोक में, कि मैं ही सबका आधार हूँ। क्या बता रहा है भगवान? उसका अर्थ है वो निराकार ब्रह्म का भी आधार है और उससे भी परे है, ऐसा नहीं कि उनसे परे निराकार ब्रह्म है। तो अंततो गत्वा भगवान क्या है या परम सत्य क्या है, वो साकार है ऐसे कहा। तो इसलिए उनका एक शाश्वत स्वरूप होता है, तो उनको इस भौतिक जगत में आने के बाद ऐसा कोई भौतिक स्वरूप लेने की जरूरत नहीं है, तो उससे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसको। इसलिए वो कभी ऐसे नहीं थे कि पहले अव्यक्त थे और अव्यक्ति बन जाते हैं, तो ये सब चीज़ पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी और पांच क्या है ऐसे तर्क देते हैं जिसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान का शाश्वत स्वरूप होता है। पहला वो कहते हैं श्रीमद् भागवत में लिख लीजिए, ये पांचों बाद में आप देख लीजिए उसमें तात्पर्य में, कि पहला श्रीमद् भागवत में ऐसे बताया गया है कि अंततो गत्वा परम सत्य क्या है, वो भगवान है। भगवान मतलब वो छह ऐश्वर्य से युक्त होना चाहिए, तो श्रीमद् भागवत में ऐसे वर्णन हुआ है। तो इसका अर्थ होता है कि उनका शाश्वत रूप होता है। ठीक है, समझ में आ गए? पहला है राइट जैसे सिर्फ प्रैक्टिस पहला चीज बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा ऐसे भगवान करके तीन स्वरूपों में वर्णन किया है। अंततो गत्वा को में भगवान है, ऐश्वर्यों से युक्त है, इसलिए उनका स्वरूप शाश्वत होता है। दूसरा है कि जो शंकराचार्य है जो मायावादियों का नेता है, उन्होंने भी ये बताया कि जो देवकी के पुत्र है वो कौन है, वो भगवान है। जो आधुनिक मायावादी उनको भी पालन नहीं करता ऐसे लेते हैं, ये दूसरा तर्क है। आधुनिक मायावादी वो भी नहीं लेते, वो शंकराचार्य अपने भगवद्गीता के तात्पर्य में उन्होंने ऐसे लिखा है, उनके टीका जो है कि भगवान कृष्ण क्या है, वो भगवान है, वही परम सत्य है, ऐसे बताया उन्होंने। नारायण परो व्यक्ता ऐसे भी उन्होंने बताया कि नारायण क्या है, तो ये व्यक्त जगत से परे है। और तीसरा, क्योंकि पिछले श्लोक में क्या बताया गया था, जो देवी देवताओं के उपासक है वो लोग उनके लोक में जाते हैं, और जो मेरे पास जो मेरे जो भक्त है वो मेरे पास आते हैं, तो इसका अर्थ है सबका लोक होता है, अलग अलग लोक, तो है ना, देवी देवताओं का लोक है और भगवान का भी लोक है, तो भगवान का लोक है तो वो कैसे निराकार हो सकते हैं, ऐसे निराकार लोक में वास करते हैं क्या? कुछ निराकार चीज कोई लोक में वास करता है? ये तीसरा तर्क है, लोक है तो उनका स्वरूप भी होना चाहिए, तो ऐसे लिखिए। लोक है तो उनका स्वरूप भी होना चाहिए, ऐसे लिखिए। तो प्रभुपाद जी वेदांत सूत्र को उल्लेख करते हैं, वेदांत सूत्र में भी ये वर्णन किया गया है कि परम सत्य क्या है, आनंदमय है, आनंदमय उद्यासात। सो आनंदमय मतलब निराकार में क्या आनंद होता है, कोई विविधता, आनंद मतलब क्या होना चाहिए, विविधता होना चाहिए, विविधता ही नहीं है, विशेषता ही नहीं है तो निर्विशेष है तो उसमें क्या आनंद आएगा, है ना, वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट ऐसे बोलते हैं ना वो अंग्रेजी में, तो वो चौथा तर्क है। और पांचवा यहां पर क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं जन्म हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, जन्म मतलब क्या है, भौतिक शरीर को धारण करना उसको जन्म कहते हैं, जन्म का अर्थ जानते हैं ना, मृत्यु का अर्थ होता है ये भौतिक शरीर को त्यागना, और जन्म का होता है, जन्म का अर्थ होता है एक शरीर को स्वीकार करना, उसको जन्म और मृत्यु कहते हैं। तो अभी अजन्म है तो कोई स्वीकार से शरीर स्वीकार करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उनका मूल स्वरूप होता है। इसके पहले भी भगवान ने इसके बारे में बताया ना, कहाँ पर बताया गया है, भगवान मैं अजन्मा हूं करके, अजोपि सन्नभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाय। उस श्लोक में तो पूरी तरह से बहुत ही स्वच्छंद भगवान वर्णन करते हैं कि कैसे वो अपने मूल रूप में प्रकट हो जाते हैं, अपने मूल प्रकृति में प्रकट हो जाते हैं, प्रकृति मतलब उनका स्वभाव या स्वरूप, उनके मूल स्वभाव या स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो अजन्म है, तो हमें जन्म चाहिए। सो और अव्यय भी है, अविनाशी है भगवान, उनका नाश नहीं होता है शरीर, उनका मृत्यु नहीं होता है, उनका जन्म भी नहीं होता है और मृत्यु भी नहीं होता है, वो भी एक है ना, अंत में बता रहे हैं ना माम अजम अव्ययम कहते हैं। तो इसके अलावा ये तर्क देते हैं भगवान की श्रील प्रभुपाद कि कैसे भगवान उनका ऐसा नहीं होता है कि पहले निराकार थे अभी वो साकार बन गए, या अभी उन्होंने भौतिक रूप को धारण किया। इसके साथ साथ श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में अविनाशी अव्ययम, अव्ययम शब्द आता है ना,
अजम अव्ययम। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ये भी वर्णन करते हैं कि कौन भगवान को समझ सकते हैं और कौन नहीं समझ सकते, वो चीज भी यहाँ पर इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं। तो सिर्फ वेदांत और वेदों को अध्ययन करने से भगवान को समझ नहीं सकते। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त, जो भगवान के भक्त है वही भगवान को समझ सकते हैं। और फिर से एक वो श्लोक पहले उल्लेख किया था ना, 16वें 15वें श्लोक के तात्पर्य में यमुनाचार्य के श्लोक, उसमें फिर से उसको उल्लेख करते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि असुर जो लोग होते हैं वो भगवान को समझ नहीं सकेंगे। त्वां शील रूप चरितय परम प्रकृष्ट सत्वेन सात्विकतया प्रबलस्य शास्त्रे प्रख्यात दैव परमार्थ विदामतिश्मतैश्च नैवासुर प्रकृत्या प्रभवन्ति बोद्धुम्। तो हे प्रभु, वासुदेव तथा नारद जैसे व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपका आपको भगवान रूप में जानते हैं। थोड़ा अंतर है ना, वहां पर जो अनुवाद दिया था और यहाँ पर जो अनुवाद दिया है अंतर है ना। तो उस श्लोक के अनुसार जिस विषय के बारे में चर्चा हो रहा है उसके अनुसार अनुवाद दिया जाता है। नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं, कौन जानते हैं या कौन जान सकते हैं और कौन नहीं जान सकते हैं, इसके वर्णन आता है। तो मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपके भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथ की व्याख्या करने में कितना ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो वेद ये उपनिषद वगैरह है वही भगवान को समझने के लिए मार्ग है, लेकिन भक्ति किए बिना हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं। तो आप बाद में क्या कीजिए, इसको भी थोड़ा लिस्ट बनाइए कि कौन भगवान को समझ सकते हैं कौन नहीं समझ सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग अगला श्लोक लेंगे। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढोऽयं नापि जानाति लोको मां। एक और बहुत हम लोग बार बार इसको चर्चा किया है, बहुत शक्तिशाली तर्क है, हमने उसको चर्चा किया है। भगवान माया से प्रभावित हो जाता है तो माया क्या हो जाता है, वो भगवान हो जाता है ना। वो परम सत्य का क्या परिभाषा रहेगा, वो अधीन माया के अधीन है तो है ना, वो गलत हो जाता है ना। इसलिए इस धारणा को स्वीकार, ये जो तर्क है बहुत शक्ति बहुत, इसको बार बार वैष्णव आचार्य ने मायावाद के विरुद्ध उपयोग किया, इसको उपयोग किया, तो ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो पिछले श्लोक में जो मायावादी लोगों को क्या बताया भगवान ने, वो अल्प बुद्धया हाँ ऐसे बताया उन्होंने, और अंत में कहा उन्होंने कि वो ये नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं, तो मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ वो नहीं जानते हैं। माम अजम और व्ययम, सो ऐसे कहते हैं है ना, माम अव्ययम अनुत्तम सॉरी मेरा अनश्वर, अव्यय मतलब अनश्वर, अनुत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो ऐसे कहते हैं, इस तात्पर्य के अंत में भी वैसे ही वो सिमिलरली क्या करते हैं, माम अजम अव्ययम, लोग मुझे जानते नहीं है कि क्या है, मैं अजन्मा और अव्यय हूं, ऐसे कहते हैं।
तो यहाँ पर कह रहे ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावतः,
ना हम प्रकाश, मैं किसी को प्रकाशित नहीं करता हूँ अपने आप को, सो सर्वस्य सबको नहीं प्रकाशित नहीं करता। तो किनको वो प्रकाशित करता है, सिर्फ अपने भक्तों को प्रकाशित करता है, इसलिए वो जान सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जिह्वावो स्वयमेव स्फुरति, प्रकाशित करना या स्फुरति वो सब एक ही है, मैं स्वयं उनको प्रकाशित करता हूँ जो सेवन मुख है। लेकिन ऐसे अबुद्ध है, मानवादी है, जो भगवान का निंदा करते हैं, तो वो लोग कभी भी, उनको भगवान कभी भी अपने आप को प्रकाशित नहीं करते। क्या करते हैं, वो योग माया का एक पर्दा अपने ऊपर डाल देते हैं ताकि वो लोग कभी उनको जान नहीं सके। सो मूडो यम ना भी जानती लोको मामोजम अव्ययम। तो यहाँ पर फिर से मूडो यम, मूर्ख अथवा अल्पज्ञों के लिए मैं कभी भी अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ, ऐसे कहते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तो अलग अलग शास्त्रों से उल्लेख कर रहे हैं, तो कहते हैं श्रीमद् भागवत में भी जो कुंती महारानी थी वो भी कहते हैं कि कैसे भगवान क्या है अपने आप को आवृत करते हैं। माया जवनिका छन्नम अज्ञान दोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। यहाँ पर भी भगवान बोल रहे हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावता, योग माया से मैं आवृत रहता हूँ, मूढ़ोयम ना भी जानाती, मूढ़ नहीं जानते हैं मुझे। वहां पर भी माया जवनिका छन्नम, वो ऐसे माया का जो कर्टन है, एक पर्दा है, उससे वो आवृत रहते हैं। अज्ञान अधोक्षजम अव्ययम, तो वो अज्ञानियों के लिए क्या है, अधोक्षज है, अपने इंद्रिय, उनका नाम ही क्या अधोक्षज है, इंद्रियों से परे है, वो अव्यय है, अव्यक्त है। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धराता, इस जगत में भी जब प्रकट हो जाते हैं तो जो मूढ़ लोग हैं उनको समझ नहीं पाते हैं। वो ऐसा है कि एक उदाहरण दे रहे हैं, नटो नाट्य धरो यथा, एक व्यक्ति नाट्य लीला कर रहा है तो वो अपने स्वरूप को क्या नहीं, वो ढक देता है, उनका वास्तविक जो स्वरूप है वो ढक देता है, वो नाट्य लीला में जो उसको रोल दिया गया है वो उसको करता है। ऐसे भगवान अलग अलग समय पर इस जगत में प्रकट होकर अलग अलग रूप को धारण करते हैं, अलग अलग रूपों में वो प्रकट होते हैं अपने, तो लेकिन जो मूढ़ लोग हैं उनको समझ नहीं पाते, यही परम सत्य है करके। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के आरंभ में वो वर्णन कर रहे हैं, जब भगवान स्वयं इस जगत में प्रकट हुए थे सभी लोग उनको समझे नहीं, वो क्योंकि बार बार जब प्रकट होते हैं वो मनुष्य समाज में ऐसे लीला करते रहते हैं, मनुष्यों की तरह बर्ताव करते रहते हैं। जैसे भगवान जब प्रकट हुए ग्वाल बाल के रूप में वो अपने जो लीलाएं कर रहे थे, फिर उसके बाद में एक क्षत्रिय के रूप में वो लीला कर रहे थे, तो इसलिए लोग उनको समझे नहीं, वो लोग क्या समझते हैं, उनको एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। ऐसे मूढ़ न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, कुंती महारानी भी मूढ़ कह रहे हैं उनको, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, राजस्व यज्ञ में शिशुपाल वगैरह भगवान को निंदा कर रहे थे, ये ऐसा है वैसा है, ऐसे 100 निंदा किया उन्होंने, भगवान 100 निंदा कर रहे थे कि वो शांत रहे। तो वैसे तो बताया गया है शिशुपाल जन्म लेने से ही वो भगवान का निंदा शुरू कर दिया, जब से उसको बोलना शुरू हो गया बोलते ही भगवान के निंदा से शुरू कर दिया। ऐसे शिशुपाल जैसे मूढ़ लोग होते हैं समाज में, वो भगवान को समझ नहीं पाते। लेकिन अन्य जो लोग थे वहां पर राजस्व यज्ञ में, भीष्म और पांडव और सभी, उन्होंने चुना कि यही परम सत्य है, इनका ही उपासना होना चाहिए, ऐसे उन्होंने चुना। तो लेकिन वो शिशुपाल बोल रहा था ये भीष्म का तो सुनना नहीं चाहिए,
वो तो बूढ़े हो गए ऐसे बोल रहा था, तो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं। मूढ़ धर मिटो नाट्य धरो यथा। और शिल प्रभुपाद भी यहाँ पर कैसे श्री ईशोपनिषद से उल्लेख कर रहे कि वहां पर कथा हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापीतमुखं तत्त्वं पुष्यन् अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। तो वहां हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक है और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंग शक्ति के का आवरण है। योग माया समावृतम क्या है वो? योग माया मतलब भगवान के अंतरंग शक्ति है, महामाया मतलब भगवान का बहिरंग शक्ति है, जिसका वर्णन 14वें अध्याय में हुआ। तो ये ब्रह्म ज्योति है वो, योग माया भी क्या है, ब्रह्म ज्योति भी क्या है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। तो वो योग माया से, वो ब्रह्म ज्योति से आवृत रहते हैं लोग, इसलिए भगवान को निराकार मानते हैं। लेकिन आप ब्रह्म ज्योति के अंदर जाएंगे तब हम लोग भगवान को, या जब भगवान ब्रह्म ज्योति को हटाएंगे तब हम भगवान को जान सकते हैं। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंग शक्ति का आवरण है, कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन का बाधक है। ऐसे कहते हैं ये भगवान। तो मेरा प्रार्थना है, कौन प्रार्थना कर रहे हैं बताइए? ऐसी ईशोपनिषद का श्लोक है ना, स्वयं वो मनो उनके पौत्र के रूप में जब भगवान प्रकट हुए थे उनको और प्रार्थना कर रहे हैं। अलग अलग मनवंतर में भगवान का अलग अलग अवतार होता है ना, स्वयं भव मनो के अलग मनवंतर में भगवान का वो क्या है, नाम क्या था भगवान का नाम, में आता है, अच्युत नहीं, अजीत, अजीत भगवान अजीत प्रकट हुए थे, स्वयं वो मन उनको प्रार्थना कर रहे हैं अपने पौत्र के रूप में, उनके पुत्र। तो ऐसे भगवान को पूछ रहे हैं। और जनरली उपनिषदों में क्या हो जाता है, क्योंकि उपनिषद क्या है, वेदों के अंग है। तो वेद में तो सिर्फ कर्मकांड का वर्णन हुआ है, सब भौतिकवाद का है, तो तुरंत ही आध्यात्मिक रूप को वो समझ नहीं पाते। इसलिए आरंभ में वेद में हमेशा भगवान का निराकार रूप का वर्णन, ब्रह्म ज्योति का वर्णन हुआ। तो लेकिन उपनिषदों के अंत अंत में हमें पता चल जाता है कि भगवान का स्वरूप भी है। जैसे यहाँ पर आरंभ में कुछ नहीं ईशोपनिषद में, हालांकि वो पूर्ण ऐसे ईशावासम इदम सर्वम, लेकिन ईश भगवान भागते भी नहीं है, भागते भी नहीं है, ऐसे बहुत सारा चीज़ों का वर्णन होगा। उनका हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भागते हैं, ऐसे कुछ कुछ अप्रत्यक्ष रूप से उनका वर्णन आता है। ज़्यादा से ज़्यादा उपनिषदों में निराकार ब्रह्म का ही वर्णन होगा। लेकिन अंत में उपनिषदों में ऐसे वर्णन आता है कि भगवान का दिव्य स्वरूप है। जैसे यहाँ पर ईशोपनिषद में, तो सभी उपनिषदों में बहुत सारे असंख्य उपनिषद है, 108 है, तो उनमें से 10-12 प्रमुख है, और उनमें से भी क्या ये जो श्री ईशोपनिषद है सो बहुत ही प्रमुख है, ये नंबर वन उपनिषद है। इसका अर्थ ही होता है ईश उपनिषद, उप मतलब नजदीक, भगवान के नजदीक जाना। इस ज्ञान ऐसे ज्ञान है जिसके द्वारा हम लोग भगवान के नजदीक जाएंगे, तो उसको ईशोपनिषद कहते हैं, भगवान ईश के पास नजदीक जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे वर्णन हुआ है कि वो भगवान कौन सा योग माया नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, किससे वो आवृत रहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति से आवृत रहते हैं। इसलिए हम लोगों को सिर्फ प्रकाश दिखाई देगा उनको दर्शन करने के लिए, लेकिन उनको प्रार्थना करना चाहिए आप मुझे हटा के आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन दीजिए, जैसे यहाँ पर स्वयं भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो भगवान के, और यहाँ पर श्री प्रभुपाद तात्पर्य में वो ये भी कह रहे हैं, कि कैसे भक्तों के लिए ही प्रकट होते हैं भगवान। और तात्पर्य के अंत में वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उल्लेख कर रहे हैं, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सकता है, लगा सके। तो क्यों इसको इस श्लोक को उल्लेख कर रहे हैं, कोई बताएंगे? प्रभुपाद जी बताइए इस श्लोक में क्या है, पढ़ेंगे पूरा। आप सदैव अपनी अंतरंग शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत के परमाणु संचर संरचन का या विभिन्न ग्रहों के अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है, ऐसे कहते हैं। यहाँ पर भगवान लोको माम अजम अव्ययम, सो लोग मुझे नहीं जानते हैं, ऐसे कह रहे हैं, इसलिए इसको उल्लेख कर रहे हैं। कोई भी भगवान को समझ नहीं सकते हैं। वैज्ञानिक यहाँ पर इसके पहले के श्लोक भी है, ये 7वें श्लोक या यही श्लोक है। वो वैज्ञानिक लोग ऐसे ग्रहों में जितना या पृथ्वी पर में जितने कण है उसको भी वो गिन सकते हैं, या सूरज के किरण में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको भी गिन सकते हैं, या कोरा क्या होता है फॉग में कितना बिंदु होते हैं उसको भी गिन सकते हैं, लेकिन भगवान को वो लोग समझ नहीं सकते हैं। उसके तात्पर्य में हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं उन्होंने ये सब किया, ऐसा कोई विज्ञानिक है क्या इस जगत में नहीं है, लेकिन ऐसे कोई है जैसे वो कहते हैं संकर्षण वगैरह जो अनंत फनों से वो क्या किया है, वो अनंत उनके बुद्धि के कारण क्या है, उन्होंने ये सब गिन लिया कितने सारे कण हैं, कितने सारे किरण में कितने सारे बिंदु है, सब उन्होंने गिन लिया है। वो लोग भी भगवान को अपने अनंत मुख से भगवान के गुणों को गिन नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे। तो ये भगवान का, क्योंकि वो अनंत है, वो तो ऐसे अर्थ होता है। तो अगला श्लोक, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि तु वेदन कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता, है ना। तो फिर से भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पर वो मुद्दा उठा रहे कि भगवान का वो साकारता या निराकार, भगवान साकार है या निराकार, उनका इस जगत में जब प्रकट होते भगवान कृष्ण, उनका स्वरूप वो निराकार थे पहले, वो अभी वो भौतिक जगत से बना हुआ एक हमारे जैसे शरीर को धारण किया है, तो वो कैसे पूर्व जन्म में को पहले वो कैसे वो जान सकते थे, पूर्व का इतिहास कैसे जान सकते हैं, अभी कैसे जान सकते हैं, और क्या हो जाता है, और भविष्य को कैसे जान सकते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य को कैसे जान सकते हैं, ऐसे यहाँ पर प्रश्न आ सकता है। या दूसरे शब्दों में, जब जीव चूंकि भौतिक शरीर को धारण करने के कारण क्या है, वो शरीर को बदलता रहता है, इसलिए सब कुछ भूल जाता है, भूत में क्या हो गया वो सब भूल जाता है। तो वो कारण है, लेकिन जो कोई शरीर को बदलते नहीं है वो कभी भूलते नहीं है। तो 4वें अध्याय में भी ऐसे हुआ था ना कि भगवान, जब अर्जुन ने पूछा कि कैसे मैं समझ लूँ कि आप पहले विवस्वान को ये भगवद्गीता का ज्ञान प्रदान किए थे, तो उसके उत्तर में, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तानहं वेद सर्वाणि न त्वं व्यक्तः परन्तप। तो हम, मैं और आप बहुत सारे जन्म लिया है, इस जगत में, लेकिन मैं वो सब कुछ जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं। तो लेकिन ये साधारण जन्म नहीं है, जैसे हम लोग कर्म से बाध्य होकर जन्म लेते हैं, हम लोग कर्म से बाध्य होकर जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान ऐसे जन्म वो अपना स्व इच्छा से लीला करने के लिए बार बार यहाँ पर प्रकट होते हैं। वो पहले विवस्वान के सामने भी प्रकट होकर उन्होंने क्या किया था, भगवद्गीता का ज्ञान प्रदान किया था, तब अर्जुन भी थे उनके साथ, लेकिन अर्जुन उसको याद नहीं रखते, भगवान उसको याद रखते। ये अंतर है जीव का बार बार जन्म लेना और भगवान का बार बार जन्म लेना। वो कभी अपने शरीर को बदलते नहीं है, वो सब कुछ याद रखते हैं, उनका स्मरण रहता है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान उनका साकार रूप है, उनका एक शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान कृष्ण का। और दूसरा चीज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वो पिछले श्लोक से उल्लेख कर रहे हैं, उसको वो विश्लेषण कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि योग माया समावृत, उसका क्या अर्थ होता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि सूरज जो है जो बादल से ढके जाते हैं, है ना, कभी ऐसे होता है ना, धूप रहता है, सूरज रहते हैं और धूप रहता है, उस समय क्या हो जाता है, बादल होने के कारण वो धूप नहीं रहता है, हम लोग देखते हैं ना उसको, या सूरज बादल में छुप जाते हैं। वास्तव में जो बादल है वो सूरज को ढक नहीं सकते हैं। हमारे जो दृष्टि को वो ढकते हैं माया शक्ति, इसलिए माया शक्ति क्या है, हमारे दृष्टि को ढक देती है, इसलिए हम लोग भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो भविष्यवाणी माम तो वेद न कर्शन, मुझे कोई नहीं जानते हैं, इसलिए सब लोग माया से ढक जाने के कारण इस जगत में कोई भी उनको भगवान को नहीं जानते हैं। और भगवान कहते हैं मैं सबको जानता हूँ, ऐसे कहते हैं, है ना। तो कभी कभी लोग ऐसे भी कहते हैं मुझे कोई समझते नहीं है, ऐसे कहते हैं, उनको अकेलापन महसूस होता है ना दुनिया में, और दुनिया कैसे लगता है उनको, बहुत ही क्रूर है दुनिया, कोई मुझे समझते नहीं, मेरा सुनते नहीं है, ऐसा लगता है ना। लेकिन एक व्यक्ति है जो सबको समझते है, वो भगवान कृष्ण है, मैं सबको जानता हूँ। और हम क्या है भगवान जानते हैं, लेकिन तो प्रभुपाद जी उसको भी उल्लेख कर रहे हैं, जैसा कि इस अध्याय में के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रों ऐसे सिद्ध पुरुष ओ में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है, भले ही, है ना, मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चिन् मां व्यतितः, कोई भी मुझे समझ नहीं पाते हैं। और एक और चीज श्रील प्रभुपाद ने इसको वहां पर उल्लेख किया इस श्लोक को, मैं चाहे भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूं। हम लोग एक चर्चा कर रहे थे ना, परम सत्य का एक लक्षण होता है, क्या लक्षण होता है, इसको तो चर्चा नहीं किया, लेकिन क्या बता रहा था, वो सही है, ज्ञान के ऊपर सबसे बड़ा अधिकारी है, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑन नॉलेज, वो एक परम सत्य भगवान कृष्ण, इसलिए परम सत्य है क्योंकि वो ज्ञान के ऊपर सर्वोच्च अधिकारी है। ऐसा कोई दे सकते है क्या, भगवद्गीता दूसरा भगवद्गीता लिख सकते है क्या, है ना, ऐसा ज्ञान कोई प्रदान कर सकते है, नहीं, कोई नहीं प्रदान, वो सर्वोच्च अधिकारी है, सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो वेदों के जो वेदांत के जो अनुयायी हैं, जो मायावादी है या साकारवादी या निराकारवादी दोनों भगवान कृष्ण को स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य ने भी गीता के ऊपर टीका लिख के अपना जो मायावाद है वो प्रचार किया है ना, उसको भगवान का ही उपयोग किया उन्होंने गीता का, क्योंकि वो भी जानते हैं, मायावादी लोग भी जानते हैं कि भगवान सर्वोच्च अधिकार है। तो ज्ञान के ऊपर सर्वोच्च अधिकारी का एक लक्षण क्या है, वो भूत भविष्य और वर्तमान को जानना चाहिए। जैसे भगवान भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं वैसे कोई नहीं जानता, ऐसे कोई पुरुष हो सकते हैं इस जगत में कि भूत और भविष्य या वर्तमान को जान सकते हैं, लेकिन जिस हद तक भगवान जानते हैं उस हद तक कोई नहीं जान सकता। तो ये भगवान, तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या है, वो परम सत्य। कहाँ कहाँ पर यह वर्णन हुआ है, वो सर्वोच्च अधिकारी ज्ञान इस अध्याय के पहला श्लोक में वर्णन हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं तत्सुनो, सुनो सुनो मेरे से सुनो कहते हैं। और पिछले अध्याय के 39वां 39वां श्लोक में वर्णन हुआ कि अर्जुन कह रहे थे इसके बारे में ये गति क्या होगा, जो जो क्या है असफल योगी का गति क्या होगा, इसके बारे में आप ही मुझे संशय से मुक्त कर सकते हैं। संशय रहित उसके बारे में ज्ञान पर इसके परे कोई भी नहीं समझ सकते। और भगवान ने स्वयं बताया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सभी जन्मों को जानता हूँ, आप नहीं जानते हो। तो उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो कहते हैं कि अर्जुन जीव को प्रतिनिधित्व करते हैं, जीव होने के कारण वो सब कुछ स्मरण नहीं रख सकता है, लेकिन भगवान क्या है, उनको सब कुछ स्मरण रहता है और सब कुछ वो जानते हैं, इसलिए उनसे हमें भगवद्गीता सुनना चाहिए ऐसे। तो ये ज्ञान का इस श्लोक भी वो बताता है, परम भगवान कृष्ण परम सत्य इसलिए है क्योंकि वो ज्ञान के ऊपर अधिकारी है। तो अगला श्लोक, इच्छा द्वेष समुत्तेना द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। इच्छा द्वेष समत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत, ये भौतिक जगत को द्वैत कहा गया। द्वैत, द्वैत मतलब इस जगत में द्वंद्व होते हैं, ये भौतिक जगत का ही स्वभाव ही है। यहाँ पर शीत उष्ण सुख दुख इच्छा द्वेष और क्या क्या है द्वंद्व, कुछ उदाहरण देंगे, मान अपमान जय विजय और अच्छा बुरा और क्या है हिंसा अहिंसा, ये सब बहुत ही निंदा प्रशंसा क्या क्या बोल रहे दिन रात है, ब्लैक एंड व्हाइट है ना। तो ये बहुत ही जगत क्या है, द्वैत है। श्रील प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं, वो गांधी को जब उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को जब उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने लिखा आप अहिंसा के बारे में बोल रहे हैं लेकिन क्या होगा, हिंसा इसको पीछे पीछे आएगा, क्योंकि ये बहुत ही जगत द्वैत है। तो इसके परे क्या है, आध्यात्मिक संस्कृति है, उसको प्रचार करना चाहिए, ऐसे उन्होंने खत लिखा। तो ऐसा ही हो गया, तो अहिंसा के बाद हिंसा हो गया है ना, हम जानते हैं ना इतिहास, जानते हैं भारत का इतिहास। क्या बोल रहे, कोई बोल रहे कुछ या बंटवारा के बाद हो गए ना, मारपीट काट सब कुछ हो गया कि नहीं। तो ये बहुत ही जगत का लक्षण है, इस जगत में हम हमेशा अहिंसा को स्थापित नहीं कर सकते, और हिंसा भी कभी कभी जरूरत पड़ता है, क्योंकि दुष्ट लोग नहीं तो शोषण करेंगे, उनको दमन करने के लिए कभी कभी हिंसा का भी उपयोग करना पड़ता है। नहीं तो क्यों पुलिस डिपार्टमेंट है, क्यों क्यों पुलिस डिपार्टमेंट है, क्यों डिफेंस है, क्यों है, है ना। तो ऐसे दुष्ट शक्ति को दमन करने के लिए हिंसा का भी जरूरत होता है। तो अंत में भौतिक जगत क्या है, द्वैत है ये। तो इसके कारण इस जगत में जो भी जीव आते हैं सो मोहग्रस्त होकर इस भौतिक जगत में, ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप। सर्गे मतलब क्या है, क्रिएशन, सृष्टि, सृष्टि में जन्म लेते हैं, इस जगत में जन्म लेते हैं। तो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है ना, क्यों हम लोग भौतिक जगत में आए, कभी कभी ये श्लोक को उल्लेख करते हैं, इच्छा और द्वेष, द्वेष के कारण। फिर प्रश्न उठता है, ऐसे भगवत धाम में जहाँ पर सभी हमारा चेतना शुद्ध रहता है तो इच्छा और द्वेष कहाँ पर आ गया, ऐसे बात है ना। तो जरूरी नहीं कि वहां पर इच्छा और द्वेष होना चाहिए, वहां पर बहुत ही जो सूक्ष्म स्वतंत्र भावना को भी उपयोग करना भी क्या है, बहुत ही सूक्ष्मता, बहुत सूक्ष्म रहता है वहां पर। हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा कर रहे थे, अपने स्व इच्छा को, स्वतंत्र इच्छा को, इच्छा से हम लोग ऐसा चूज कर सकते हैं, ऐसा चुनौती कर सकते हैं, या हम लोग भौतिक जगत को जानने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाता है, हम लोग द्वंद्वों से मोहित हो जाते हैं, द्वंद्व मोहेन भारत, इच्छा और द्वेष से। तो सामान्यतः क्या हो जाता है, ऐसे चीजों को हम लोग इच्छा करते हैं जो हमारे मन और इंद्रियों को पोषण करते हैं, और जो मन और इंद्रियों के लिए कष्ट देते हैं उनको, उनसे हम लोग द्वेष करते हैं, इच्छा और द्वेष, यही मोह है भौतिक जगत का। हम लोग अपने आप को ये शरीर और मन मानते हैं, शरीर और मन से अपने आप को पहचान के जो शरीर को आनंद देने वाला है उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं, और जो शरीर और मन को तकलीफ देता है उसको द्वेष करते हैं। इस द्वंद्वों की, इस द्वंद्व के कारण हम लोग मोहग्रस्त होके इस जगत में जन्म लेते हैं, सम्मोह हो जाता है। विशेष करके मोह मतलब भौतिक आसक्ति को मोह कहते हैं। भौतिक आसक्ति विशेष करके किससे होता है, अपने परिवार वालों से होता है, सगे संबंधियों से होता है, और हमारे जो पास जो वस्तुएं हैं उसके प्रति होता है। तो पारिवारिक जीवन में तो ये जो आसक्ति जो है बहुत ही कठिन है, उससे मुक्त होना वो बहुत प्रबल रहता है। तो प्रहलाद महाराज तो बहुत लंबा वर्णन करते हैं और अंत में कहते हैं कि दुरंत मोह, तो दुरंत मोह एक ऐसा मोह है जिसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे भगवान बताते हैं मम माया दुरत्य, दुरत्य मतलब पार करना बहुत मुश्किल है, वैसे दुरंत मोह कहा गया। तो पारिवारिक जीवन में किससे आसक्त रहते हैं कि अपने पत्नी बच्चे और किसे, सेवक जो होते हैं, है ना, हम लोगों को सेवक चाहिए कुछ, या कुछ सेवा दासियां चाहिए, है ना, इसे आसक्त रहते हैं। और घोड़े, हाथी घोड़े से आसक्त रहते हैं, पहले जमाने में हाथी घोड़े होते थे, आजकल क्या होते हैं, वो कार सेंट्रो, हाँ क्या है, सम टिन कार होता है, उससे लोग आसक्त हो जाते हैं, है ना। कभी ऐसे हो जाता है कुछ, कोई अन्य गाड़ी आके थोड़ा भी ब्रश करके, थोड़ा वो ना कलर भी चला गया ना उसका, हाँ कुछ स्क्रैच हो गया तो इतना डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, क्यों उसकी आसक्ति का, ऐसा नहीं कि जानबूझ के टक्कर मरवाना चाहिए, लेकिन आसक्ति होता है, तो ये आसक्ति होता है हाथी घोड़े से। और ये कार वगैरह मेंटेन करना हाथी घोड़े को मेंटेन करने से समान है ना, है ना, बड़ा बड़ा कार मेंटेन करना मतलब वो कितना फ्यूल खाता है। पहले जमाने में वो घास खाते थे हाथी घोड़े, ये तेल खाते हैं, उस तेल को निकाल के बाहर इतना ट्रांसपोर्ट करके इतना बोझा बढ़ाया है बहुत मनुष्य समाज में। तो ऐसे उससे आसक्त रहते हैं,
घर में जो घर से आसक्त रहते हैं ना, हाँ भौतिक घर से आसक्त रहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसीलिए कहा करते थे, प्रभुपाद जी इसको उल्लेख करते थे बार बार, मेरे गुरु महाराज कहते हैं इसलिए अच्छा है कि एक क्या होना चाहिए, रेंटेड हाउस होना अच्छा है, इससे कि अपना स्वयं का घर हो, तो स्वयं का घर है तो उससे आसक्त हो जाए, बाद में अगले जीवन में क्या हो जाता है, उसके सामने एक हम लोग वृक्ष बन जाए, या उसके उसी घर में क्या कोई कॉकरोच या चूहा बन जाए, बस ऐसे घर से और घर में जो सामान होते हैं उससे आसक्त, फर्नीचर से आसक्त हो जाते हैं, तो ऐसे लंबा लिस्ट बड़ा देते ही जाते हैं तो प्रहलाद महाराज और अंत में कहते हैं ये दुरंत मोह है, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, इस मोह से मुक्त होना मुश्किल है, तो यही बता रहे सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तपः, ऐसे इस जगत में सभी जीव वो सम्मोहित मोहित होकर जन्म लेते हैं, और उनका भाषा कैसे रहता है तात्पर्य के अंत में देखिए, वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान सुख दुख स्त्री पुरुष इच्छा बुरा आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों से द्वंद्वों में रहते हैं, रहते हुए सोचते रहते हैं ये मेरे पत्नी है, ये मोह है ना, ये मोह का वर्णन उसकी भाषा या उसकी सोच विचार कैसे होता है उसके बारे में, ये मेरे पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं स्त्री का पति हूँ, यही मोह के द्वंद्व है, जो लोग ऐसे द्वंद्वों में मोहग्रस्त रहते हैं वो निपट मूर्ख है और वे भगवान को नहीं समझ सकते, तो वो कितना दिन रहता है ये मोह, तो 20 साल 40 साल या 50 साल 100 साल फिर वो खत्म हो जाता है चैप्टर, और दूसरा नया सम्मोह का अध्याय आरंभ हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर ओपन्स, तो ऐसे जीव प्रकृति में जन्म लेता रहता है, तो आगे का श्लोक एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढतरा, जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया अच्छे उच्छेदन हुआ हो चुका होता है वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं, तो ईशान त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, पिछले श्लोक में मोह और समोह के बारे में भगवान बोलते हैं, इस श्लोक में वो कौन उसको मुक्त होके दृढ़ भक्ति में लगते हैं उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है, पिछले लोक में सम्मोह मोह शब्द आया था ना, तो यहाँ पर द्वंद्व मोहे न, वो मोह और सम्मोह किससे हो जाता है, द्वंद्व में पड़ने के कारण, तो वो द्वंद्व और मोह से दोनों से मुक्त होकर भजन्ते माम दृढ़ व्रता, उनके बारे में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति को त्वेषां त्वन्तगतं पापं, सभी पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, पाप कर्म में मुक्त होंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग द्वंद्व में पड़ जाएंगे, तो इस भौतिक जगत के जो अच्छे बुरे फल है उसको भोगने के लिए हम लोग इस भौतिक जगत में फिर से आना पड़ेगा, हम लोग जन्म लेंगे ऐसे मोह में, तो द्वंद्व में जन्म लेके मोहित हो जाएंगे फिर से, सो जनानाम पुण्यकर्मणाम उतना ही काफी नहीं है, तो क्या करना चाहिए, पुण्यकर्म में लगना चाहिए, पुण्य कर्म मतलब विशेष करके यहाँ पर भक्ति के संबंधित कर्म, क्योंकि भक्ति कभी भी भौतिक पुण्य करने से प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ जो भक्ति के संबंधित जो कार्य करते हैं तभी भक्ति प्राप्त होता है, इसलिए पुण्य शब्द का अर्थ है भौतिक पुण्य का वर्णन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सुकृति जो आध्यात्मिक पुण्य है इसके बारे में वर्णन कर रहा है, तो वो एक श्लोक है ना, ये अलग अलग शब्दों में कभी कभी अलग अलग शब्द अलग अलग दृष्टिकोण से उपयोग किया जाता है, सो कृष्ण रसभावितामति जन्म कोटि सुकृतीर्न लभ्यते, कोटि जन्म तक पुण्य करेंगे तो भी हमें क्या क्या प्राप्त नहीं होगा, भक्ति प्राप्त नहीं होगा। वहां पर सुकृति शब्द इसलिए वो पुण्य को इंगित करता है, और यहाँ पर जो पुण्य है वो आध्यात्मिक सुकृति को इंगित करता है। समझ में आ गया दोनों श्लोकों में क्या अंतर है? जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, कोटि जन्मों तक आप पुण्य करेंगे तो भी भक्ति प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पुण्य का फल है भौतिक फल मिलता है, आप अच्छे फल मिलते हैं, पाप करने से हम लोग बुरे फल मिलता है। लेकिन जो भगवान के संबंधित कार्य करते हैं, कोई भक्त आपको प्रसाद दिया, मंदिर में दर्शन के लिए आए, कोई प्रवचन सुने, या ऐसे कुछ, या भगवद्गीता या भागवत, ऐसे भगवान के संबंध में, भक्ति संबंध में शास्त्र जो है वो पढ़ लिए, तो उसके द्वारा हम लोग ये पुण्य को प्राप्त करते हैं, पुण्य कर्म कहते हैं। ऐसे करते 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 इकट्ठा करते करते क्या हो जाता है, एक दिन दृढ़ भक्ति में लग जाते हैं। तो आरंभ में कैसे होता है हमारा भक्ति, कभी कुछ नियमों को पालन कर पाते हैं, कभी कुछ नियमों को पालन नहीं कर पाते हैं, है ना, संघर्ष होता रहता है ना, कभी उठना कभी गिरना, कभी उठना कभी गिरना होता है ना। वो किसलिए होता है, अभी तक हम लोगों ने पूरी तरह से प्राप से मुक्त नहीं हुए और सब पुण्य को अर्जित नहीं किया है सफिशियंटली, वो सुकृति को नहीं बढ़ाया है। शायद आप पाप से मुक्त हुए होंगे, पाप कर्म को बंद कर दिए होंगे, लेकिन अभी तक वो पुण्य पूरी तरह से वो इकट्ठा नहीं हुआ है, इसके कारण अभी भी संघर्ष चलता रहता है। लेकिन एक बार ये पुण्य इकट्ठा हो गया, पुण्य कर्म नाम, और ऐसे द्वंद्व और मोह से मुक्त हो गए, तो तब क्या हो जाता है, हमारा भक्ति दृढ़ भक्ति हो जाता है। तो विशेष करके यहाँ पर जो दृढ़ भक्ति का वर्णन हो रहा है वो तो अनर्थों से निवृत्त होना चाहिए। तो सभी हमारे हृदय में जो अनर्थ होते हैं, काम क्रोध लोभ, उससे मुक्त होना चाहिए, तभी दृढ़ भक्ति में हम लोग लग सकते, नहीं तो हमेशा वो आपको खींचते रहेंगे, नीचे खींचते रहेंगे, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहेगा। सो दृढ़ पूर्वक भक्ति वहां से होता है, अनर्थ निवृत्ति। दूसरे शब्दों में यहाँ पर निष्ठा जो अनर्थ निवृत्ति, आदो श्रद्धा तथा साधु संग वजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, तो वो कैसे होता है ये सब चीज, कैसे हम लोग इसको प्रैक्टिकली कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे स्थिति को, दृढ़ भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये उल्लेख कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में। तो महत्सेवा द्वारम उन्मुक्ते योषिताम संगीतंगानाम, सो तमो द्वारम योषिताम संगीतंगानाम। सो वहां पर वर्णन करते हैं कि वृषभ देव जो महात्माओं का सेवा करते हैं, शुद्ध भक्तों का जो सेवा करते हैं, उनका संग लेते हैं, तो हम लोग क्या है वो मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होते हैं। और योषिताम संगी संगाणाम, जो योषित, योषित मतलब स्त्री, स्त्रियों के संग करने वालों का संग करेंगे, मतलब भौतिकवादी लोग हमेशा स्त्री संग में ही रुचि रखते हैं, स्त्री संगियों का हम लोग संग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तमो द्वारा पाप कर्म में लिप्त हो जाए। समझ में आ गया कैसे पुण्य प्राप्त होता है और कैसे पाप कर्म में हम लोग लिप्त होते हैं, तो इसलिए उनका संग त्याग देना चाहिए, तभी पापों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे और हम लोग पुण्य कर्म में तभी लगेंगे जब ऐसे महात्माओं का संग लेंगे। उसके बाद के श्लोक में भी वृषभ देव वो कौन महात्मा है उसके बारे में, भगवद्गीता में भी वर्णन, महात्मा नस्तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृति मानसिता भजन त्यनन्य मनसो ज्ञातवा भूतादिम, जो अनन्य भाव से भगवान का भक्ति कर रहे हैं, सततम कीर्तम यंतो माम यतंतश्च दृढ़व्रत नमस्यंतश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते, ऐसे वो महात्माओं का वर्णन किया गया जो भगवान को शरण में जाते हैं। स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, वासुदेव सब कुछ है करके जो शरण में जाते हैं उनको महात्मा कहते हैं। तो ऐसे भक्तों का सेवा करने से, उनका संग लेने से हम लोग पुण्यवान बन जाएंगे, पुण्य कर्मणाम बन जाएंगे, और योषितां संगी संग्राम भरेंगे तो पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, या उनको त्याग देंगे, वो सासत संग को त्याग देंगे तो ऐसे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, तब जाके हम लोग सही मार्ग में चले। यहाँ पर एक चीज बताते हैं प्रभुपाद जी, मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन आप अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। सो वो कहते हैं भगवान के सारे भक्त विश्व भर में भ्रमण इसलिए करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ने भ्रमण किया, किसलिए भ्रमण किया उन्होंने, वो जब जा पाश्चात्य देश जा रहे थे, वो सुमति मुरारजी ने उनको जो टिकट दिया उनके जहाज में, उनके सेक्रेटरी बोल रहा था, स्वामी जी आप बूढ़े आयु में क्यों ये सब अमेरिका देखना चाहते हैं, ऐसे वो सोचते हैं कि प्रभुपाद जी वहाँ पर किस लिए जा रहे हैं, ऐसा घूमने के लिए या कोई है ना व्हाट इज दैट साइट सीइंग करने के लिए जा रहा है, ऐसा सोचते हैं, इतना ऐसे भी मूर्ख होते हैं। वो शुद्ध भक्त को उनकी भावनाओं को उनका मिशन को क्या समझेंगे, है ना, क्या किया उन्होंने 12 साल में, क्या साइट सीइंग किया उन्होंने, दिन रात मेहनत किया उन्होंने ना सब जगह प्रचार करने के लिए, भगवान को आंदोलन को प्रचार करने, ये भगवद्गीता का जो संदेश है उसको प्रचार करने का। तो हम बता रहे थे ना आत्मवत मनने थे, ये बहरा लोग दूसरों को बहरा समझते हैं क्योंकि वो सुनते नहीं है जो दूसरे बात बोल रहे हैं, आत्मवत मनने थे जगत, अपने चेतना के अनुसार दूसरों को भी मानते हैं। तो भगवान के सारे भक्त विश्व भर भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को अनेक मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम से सबसे बड़ा अवहेलना। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। मतलब दूसरे शब्दों में मायावादी लोग क्या है, वो मोहग्रस्त है, द्वंद्व मोहेन बारता बोलोगे, द्वंद्व मोहेन द्वंद। तो अगला श्लोक, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् आध्यात्मम् कर्म चाकिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वो दिव्य कर्मों के विषयों में पूरी तरह जानते हैं। वो लोग क्या हो जाते हैं, जरा मरण मोक्ष आया, ऐसे मार्ग में लगे हुए मां आश्रित तंत्र। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भक्ति के शरण ग्रहण करते हैं वही लोग ही जरा मरण मोक्ष से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे इस भौतिक जगत के पिछले श्लोकों में सर्ग, वो 27वां श्लोक में सर्ग के बारे में बताया ना, सर्गे यान्ति परन्तप सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति, इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। भौतिक जगत का क्या अर्थ होता है, जरा मरण, वही भौतिक जगत, भौतिक जगत में सिर्फ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन जो भगवान के शरण वही लोग इसको मुक्त हो सकते। ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाकिलम, उनको हमें क्या समझना चाहिए, ब्रह्म समझना चाहिए, आध्यात्मम कर्म चाकिलम, क्योंकि वो लोग आध्यात्म में लगे हैं। यहाँ पर ये सब शास्त्र है ना, शब्द आते हैं ना, ब्रह्मा अध्यात्म, ये सब चीज़ों को और विस्तार से अगले अध्याय में वर्णन किया जाएगा क्योंकि इनके बारे में और विस्तार से जाना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, माम आश्रित्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो भगवान के भक्ति का आश्रय ग्रहण किया है, भक्ति कर रहे हैं, वही लोग ब्रह्म है, वही लोग वास्तविक आध्यात्मवादी है, है ना। इस जगत में बहुत सारे लोग दिखावा करेंगे आध्यात्म का, है ना, मैं भी अध्यात्मवादी हूँ, मैं भी बहुत बड़ा गुरु हूँ, साधु हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन वास्तव में अध्यात्मवादी कौन है, वास्तव में ब्रह्म कौन है? वो माम आश्रित्य, जो मेरा शरण ग्रहण किया, मेरा भक्ति कर रहा है, तो वही व्यक्ति। इस अध्याय के आरंभ कैसे हुआ? मैया सक्त मना पाता योगम युंजन मदाश्रया। तो यहां पर भी अंत में भी भगवान वही बता रहे हैं कि वही लोग जरा मरण मोक्ष, जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं और भगवान को भी जान सकते हैं। तो भगवान को जान के ही मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज माम आश्रित्य कहलाए। तो प्रभुपाद जी इसको बारे में वर्णन करते हैं, ब्रह्म क्या शब्द को। सो आदिभूतम आदिदैवम माम आसादि यज्ञम च यो विदु प्रयाण काले पिच माम ते विदु युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान कर, जान और समझ सकते हैं। तो इसका वर्णन आगे आएगा, क्या महत्व है मृत्यु के समय में भगवान को जानना, या यहाँ पर थोड़ा पिछले श्लोक में वो इंगित किया है जरा मरण मोक्षाय। तो जन्म और मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? हमें भगवान को समझना होगा। तो कैसे समझना है उनको? सादि भूतादि दैवम। सो वो वही आदि भूत है, भौतिक जगत के चलाने वाले हैं, सिद्धांत है वो, आदि भूत है, आदि दैव है, समस्त देवताओं के नियंत्रण करने वाले हैं। स आदि यज्ञम च, इतना ही नहीं, स मतलब इतना ही नहीं, माँ मतलब मुझे भगवान कृष्ण। सो भगवान कृष्ण को आदिभूत मानना चाहिए, समझना चाहिए, आदिदेव। ये सब चीज ये सातवें अध्याय में भी वर्णन हुए है, है ना। उन्होंने अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तः, मैं ये दोनों इन प्रकृतियों का स्त्रोता हूँ और मैं इनका विनाश करना चाहिए। सो और आदिदैवम भगवान बोलते हैं, मेरे से ही ये देवता भी क्या करते हैं, शक्ति प्राप्त करके उनके भक्तों को अलग अलग चीजों को प्रदान करते हैं। सो आदि यज्ञम, सभी यज्ञों का सो मई भोक्ता हूँ, समस्त यज्ञों का नियंत्रण करने वाले या भोक्ता है। च ये विदुः प्रयाण काले पिचा माम थे विदुर युक्त चेतसः। ऐसे कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावनामृत में वो लोग मुझे जानते हैं प्रयाण काल, अंतिम समय में। प्रयाण काल में आप भगवान को ऐसे जानेंगे तो क्या हो जाता है, या ऐसे हम लोग उनको स्मरण करेंगे तो जरा मरण मोक्ष से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। सो तात्पर्य में प्रभुपाद इसका वर्णन करता, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसे दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो ऐसे सातवें अध्याय अंत होता है। उसके बाद प्रभुपाद उसको सार में, सातवें अध्याय का सार को प्रस्तुत करते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा लिया है। तो कोई प्रश्न टीका टिप्पणी इसके बारे में? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम
राम राम हरे
हरे। मुझे कोई नहीं,
कोई नहीं जानता। यहाँ पर उसके पहले के श्लोक में लोगो माम अभिजानाते, इस जगत में भौतिक जगत में जानते नहीं, मतलब भक्त लोग जानते हैं लेकिन जनरल सामान्यतः भौतिक जगत के लोग नहीं जानते, वो अर्थ है। कुछ ठीक है। हरे कृष्ण।